आधुनिक व्यक्तिवाद, आधुनिक व्यक्तिवाद की उत्पत्ति। 17वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई और व्यक्तिवाद का स्थान आदर्शवादी तथा समदृष्टवादी सिद्धांतों ने ले लिया, किंतु परंपरागत व्यक्तिवाद के विरुद्ध उत्पन्न इन प्रतिक्रिया के एक नवीन प्रतिक्रिया को जन्म दिया। इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप 17वीं शताब्दी के व्यक्तिवाद से भिन्न एक नवीन रूप में व्यक्तिवाद विचारधारा फिर से व्यक्त हुई। इसे ही विचारक आधुनिक व्यक्तिवाद कहते हैं। प्रोफेसर जॉर्ज लिखते हैं, परंतु व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया ने एक और प्रतिक्रिया पैदा की है। पहिए ने पूरा चक्र घूम लिया और वर्तमान राज्य से उत्पन्न असंतुष्टि ने व्यक्तिवादी विचारधारा को पुनर्जीवित करने में सहायता की है, जो यदि स्वरूप में नहीं होता तो आत्मा में अवश्य 19वीं शताब्दी के अंत तक व्यक्तिवाद से मिलती जुलती है। आधुनिक व्यक्तिवाद का समर्थन का अर्थ। आधुनिक व्यक्तिवाद और 19वीं शताब्दी के व्यक्तिवाद के अंतर यह है कि जहाँ 19वीं शताब्दी का व्यक्तिवाद राज्य की तुलना में व्यक्ति को अधिक महत्व देता था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए राज्य के कार्यों को सीमित करने के पक्ष में था, वहां आधुनिक व्यक्तिवाद व्यक्तियों के समुदाय तथा संगठनों पर अधिक बल देना चाहता है। आधुनिक व्यक्तिवाद राज्य को विशेष और उच्च महत्व की संस्था नहीं मानते, जिस प्रकार अन्य संस्थाएं हैं, और वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जीवन के अन्य विविध पक्षों से संबंध रखती हैं। ठीक उसी प्रकार राज्य भी एक संस्था है जो इन सब संस्थाओं को एकीकृत रखती है। बारकर ने व्यक्तिवाद के इस आधुनिक रूप पर बल देते हुए कहा है कि यदि अब हम व्यक्तिवादी हैं तो हमारा रूप सामुदायिक व्यक्तिवादियों का हो गया है, हमारे व्यक्ति समुदाय बनते जा रहे हैं। आधुनिक व्यक्तिवाद के सर्वाधिकारवादियों द्वारा प्रतिपादित राज्य की निरंकुशता की चुनौती दी है, और इसने समष्टिवादियों द्वारा प्रतिपादित इस विचार का भी विरोध किया है कि राज्यों के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया जाना चाहिए। आधुनिक व्यक्तिवाद के लक्षण। आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रमुख रूप से निम्नलिखित तीन लक्षण कहे जा सकते हैं। पहला, आधुनिक व्यक्तिवाद उन सभी विचारधाराओं का विरोधी है जो राज्य को सर्वशक्तिशाली मानती है। उदाहरण के लिए, संप्रभुता को हीगलवादी धारणा का विरोध आधुनिक व्यक्तिवाद का एक प्रमुख लक्षण है। दूसरा, ये लोग समुदाय के महत्व को स्वीकार करते हैं। बारकर के अनुसार वर्तमान समय में व्यक्ति बनाम राज्य नहीं जाना जाता, वरन समुदाय बनाम राज्य लिखा जाता है। केवल राज्य ही महत्वपूर्ण नहीं, वरन व्यक्ति के अन्य संगठन भी पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं। सच तो यह है कि व्यक्ति का संबंध इन समुदायों से अधिक है। मजदूर संघ, वाणिज्य मंडल, स्कूल और चर्च आदि ऐसे ही समुदाय हैं जिनका हमारे जीवन से प्रत्यक्ष और गंभीर संबंध है। अतः आधुनिक व्यक्तिवाद इन समुदायों को उचित महत्व देने के पक्ष में नहीं है। तीसरा, समुदाय को महत्वपूर्ण मानते हुए आधुनिक व्यक्तिवाद राज्य को कुछ महत्व तो देता ही है। यह राज्य को समुदायों का समुदाय अर्थात संघों का संघ मानता है। राज्य विभिन्न और परस्पर विरोधी समुदायों के बीच एक संयोजक कड़ी है। यह बात राज्य को अन्य समुदायों से अलग एक विशिष्ट रूप प्रदान कर देती है। आधुनिक व्यक्तिवाद का विकास। आधुनिक व्यक्तिवाद को विकसित करने में निम्नलिखित तत्वों में प्रमुख हाथ है। पहला, वर्तमान समय में मानव जीवन बहुत अधिक विविधतापूर्ण हो गया है। जीवन के बहुपक्षीय हो जाने के कारण मानव समाज में अनेक समुदायों की स्थापना की गई और राज्य की तुलना में उनकी मान्यता तथा महत्व को स्वीकार कर लिया गया। बारकर के शब्दों में, हम राज्य को समान जीवन के लिए व्यक्तियों के समुदाय के रूप में कम और पहले से समान जीवन करने वाले अनेक समूहों में एकीकृत व्यक्तियों की एक अधिक उच्च और व्यापक समान उद्देश्य के लिए संगठित समुदाय के रूप में अधिक देखते हैं। दूसरा, महायुद्धों के समय यूरोप के विभिन्न राज्यों की सरकारों ने अत्यधिक शक्तियां ग्रहण कर ली और व्यक्तियों की स्वतंत्रता को बिल्कुल कुचल दिया। इन सरकारों ने मनमानी के परिणाम स्वरूप जनता में सरकार की शक्तियों को सीमित करने की इच्छा उत्पन्न हुई। जोड़ के शब्दों में, युद्धकाल में संघर्षतः राज्यों ने राज्य की गतिविधियों के क्षेत्र का जो विस्तार हुआ, इस विस्तार के कारण राज्य के विरुद्ध एक भावना उत्पन्न हो गई। तीसरा, बहुत से व्यक्तियों को इस बात पर भी आपत्ति होने लगी कि व्यवहार में प्रजातंत्र बहुमत वर्ग का शासन होता है और यह बहुमत मनमानी करने लगता है, अतः बहुमत की तानाशाही से अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा करने के लिए अनेक बुद्धिमान व्यक्तियों ने इस बात पर बल दिया कि राज्य की शक्तियों को सीमित किया जाए और इन शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए। आधुनिक व्यक्तिवाद के समर्थक। आधुनिक व्यक्तिवाद के समर्थकों में ग्राहम वालेस, नॉर्मस एंजल, मिस पॉलेट तथा कुछ श्रेणी समाजवादियों का नाम लिया जाता है। ग्राहम वालेस के अविकसित राज्यों के प्रति अपने अविश्वास को व्यक्त किया है। वह आधुनिक केंद्रित राज्यों का विरोध करता है तथा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्मित विधानमंडलों का ही नहीं वरन वर्तमान शासन की समस्त पद्धति का विरोध करता है। वालेस ने कहा है कि निम्न सदन का निर्माण प्रादेशिक प्रतिनिधित्व और उच्च सदन का निर्माण व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाना चाहिए। उसने इस बात पर भी जोर दिया है कि प्रत्येक संभावित उपाय से अल्पमतों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जानी चाहिए। नॉर्मन एंजलस अंतर्राष्ट्रवाद का एक महान समर्थक था और उसने अपनी कृति द ग्रेट आइल्यूशन में उस भविष्य की कल्पना प्रस्तुत की है जब सभी राष्ट्रीय राज्य एक आर्थिक आधार पर निर्मित विश्व राज्यों में संयुक्त हो जाएंगे। इन विचारकों के अनुसार एकता का वास्तविक आधार आर्थिक ही हो सकता है और राष्ट्रीय राज्य एकता के इस मार्ग में व्यर्थ के अवरोध हैं। इस प्रकार मिस फॉलेट ने अपनी पुस्तक द न्यू स्टेट में समुदायों की महत्ता का प्रतिपादन किया है। आधुनिक व्यक्तिवाद की उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आधुनिक व्यक्तिवाद बहुलवाद तथा श्रेणी समाजवाद को अत्यंत निकट है। प्राचीन तथा आधुनिक व्यक्तिवाद में अंतर। यद्यपि व्यक्तिवाद के ये दोनों सो ही स्वरूप राज की निरकुशलता, सर्वाधिकार और विरोध करते हैं, लेकिन इस समानता के होते हुए भी इनमें कुछ विभिन्नताएं अवश्य हैं जिनका उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है। पहला, आरंभिक व्यक्तिवाद की इकाई व्यक्ति था परंतु आधुनिक व्यक्तिवाद की इकाई संघ है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आरंभिक व्यक्तिवाद का दृष्टिकोण आण्विक था किंतु आधुनिक व्यक्तिवाद का दृष्टिकोण संघीय है। दूसरा, 17वीं शताब्दी के व्यक्तिवाद की अपेक्षा आधुनिक व्यक्तिवाद बहुलवाद तथा श्रेणीमूलक समाजवाद के अधिक निकट है। तीसरा, 19वीं शताब्दी का व्यक्तिवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए राज्य के कार्यों को सीमित करना चाहता था, जबकि आधुनिक व्यक्तिवाद राज्य की शक्तियों को विकेंद्रीकृत कर उन्हें समुदायों को सौंपता है।